ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम केंद्र 7-11 अध्याय श्लोक नंबर 13 ये बोर्ड में। संस्कारा यथाचीन साधीजो जगदाद्या दानाजन्म जन्म संस्कारयत विचीनाः स्वादीजो जो जगदायाम् इद्याद्यायानादनानि एतानि द्विजन्मनाम् जन्म कर्म वदातानाम् प्रिय च समचोदिता। संस्कार यत्र विचीनाः आदिजो जगदायाम् इद्याद्यायानादानानि वेतानि द्विजान्मनाम् जन्म कर्म वादातानाम् यः च समचोदितः।
Thank you. शब्दार्थ संस्कार संस्कार शुद्धिकरण की विधियां यत्र जिसमें अविच्छेदना बिना किसी क्रम भंग के सह ऐसा व्यक्ति द्विज दो बार जन्मा अजह ब्रह्मा ने जगाद विधान किया यम जो इज्या पूजा अध्ययन वेद अध्ययन दानानी तथा दान विहितानी बताए गए द्विजन्म नाम द्विजों का जन्म जन्म से कर्म तथा कर्म से अवदानानाम अवदातानाम विषय विमल 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 पवित्र क्रिया कार्यकलाप च भी आश्रम चोदिता चारों आश्रमों के लिए संस्तुत अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जो लोग अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य नियम विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा द्वारा दी जा चुकी है वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करे वेदों का अध्ययन करे तथा दान दे। इस पद्धति से उन्हें आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। तात्पर्य मनुष्य के आचरण संबंधी 30 सामान्य गुणों की सूची प्रस्तुत करने के बाद अब नारद मुनि 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को उपर्युक्त 30 गुणों से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए अन्यथा वह मनुष्य भी नहीं है। फिर ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों में वर्णाश्रम पद्धति का शुभारंभ करना चाहिए। वर्णाश्रम पद्धति में पहला गर्भाधान संस्कार है जो मैथुन के समय अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों द्वारा निष्पादित किया जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए नहीं अपितु संस्कार के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। मनुष्य को वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करके केवल इंद्रिय सुख के लिए वीर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, परंतु संभोग में संयम तभी संभव है जब जनता को उपर्युक्त 30 गुणों में प्रशिक्षित किया जाए, अन्यथा यह संभव नहीं है। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म भी ले किंतु यदि वह संस्कारों का पालन न करे तो वह द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनकी संतानें वर्ण शंकर कहलाती हैं, और जब वर्ण शंकर जनसंख्या बढ़ जाती है तो सारे विश्व की स्थिति नारकीय बन जाती है। अतएव सारा वैदिक वाङ्मय वर्ण शंकर जनता उत्पन्न करने के विरुद्ध सावधान करता है। वर्ण शंकर जनता होने पर लोगों को शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी ही बड़ी विधानसभाएं, संसद या अन्य संस्थाएं क्यों न हो।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपाकरं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण। इस अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अनेक प्रश्न पूछे। आप पे सातवें स्कंद में पराज महाराज की कथा सुनते आए हो, आपने पढ़ा किस प्रकार परम भगवान ने प्रहलाद की सुरक्षा की, और प्रहलाद कौन थे? उत्तम कोटि के भक्त। तो इस अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अनेक प्रश्न पूछे। आप भागवतम में देखते हो कि अनेक भक्त प्रश्न पूछते हैं। भागवतम में क्या है? प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर। जैसे आप जब इम्तिहान की तैयारी करते हो तो किताबें छापते ना, क्वेश्चन आंसर। भगवतम में अनेक प्रश्न है और साथ में उत्तर भी है। युधिष्ठिर महाराज वैसे तो आत्मज्ञानी है, पर युधिष्ठिर महाराज ये स्थापित करते हैं कि जब आप किसी संत को मिलो तो उस संत से हमें आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे इसी सातवें स्कंद में आगे जाकर युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा, ये बताओ कि हम जैसे अज्ञान व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में हैं, किस प्रकार वैदिक शास्त्र के अनुसार जीवन को सफल बना पाएंगे? तो आप कहोगे युधिष्ठिर महाराज ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक रूप से देखा जाए ये प्रश्न पूछ रहे हैं किसके लिए? हम सबकी भलाई के लिए। तो नारद मुनि का प्रश्न क्या था युधिष्ठिर महाराज? और नारद मुनि जैसे आप जानते हो बारह में एक महाजन माने जाते हैं, शंभु नारद शंभु कौमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि भाई जैसे के भाई। बारह प्रसिद्ध अधिकारी हैं जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिनमें एक है नारद मुनि। भागवतम के 10वें स्कंद में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान हमें परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए और परंपरा द्वारा प्राप्त होगा ये ज्ञान औषधि बन जाएगा हमारी सब समस्याओं के लिए। तो नारद मुनि है परब्रह्म में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, फिर ज्ञान आगे दिया व्यासदेव को, इन्होंने शुक्रदेव गोस्वामी को दिया, तो इस प्रकार परंपरा द्वारा यह ज्ञान आ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न क्या था, युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था ये शिक्षा दीजिए किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्या होना चाहिए हमारा धर्म, ये था उनका प्रश्न। तो नारद मुनि जो स्वयं आत्मज्ञानी हैं, जिनके मन में सदा एक ही भाव रहता है, नारद मुनि के मन में सदा एक ही भाव रहता है, वो भाव क्या है, नारायण का प्रचार करो, लोगों को जोड़ो भगवान की सेवा में। वरना नारद मुनि पतितों को भी वो प्रचार करते हैं, जैसे मृगारी शिकारी का उदाहरण किया। तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने ये कहा कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अभी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करो भगवत प्राप्ति के लिए। तो नारद मुनि का उत्तर था आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करो, परम भगवान के शरणागत हो जाओ। और इस अध्याय में नारद मुनि समझाते हैं कि समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और आश्रमों में। और नारद मुनि ने पिछले श्लोक में 30 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है जो कि हम सबको अनुकूल करना चाहिए। 30 गुणों में एक है सत्यता। भगवद गीता में जीव की तपस्या का वर्णन है और जीव की एक तपस्या क्या है, सत्य का उच्चारण करो। तो मानव समाज में हमें सत्यता का पालन करना चाहिए। फिर मानव समाज में कृपा की भावना होनी चाहिए, दयालु होना चाहिए। आज समाज की स्थिति ऐसी है कि लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं और साथ में पशुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं और कई धर्म के नाम पर पशुओं को भगवान के दुर्गा जी के चरणों में भी अर्पण करते हैं। ये महान अपराध है। जिसके पास असली धार्मिक ज्ञान है वो सब जीवात्मा को आदर देता है। हम बीजा पदा पिता, मैं हूं सब योनियों का पिता। और आगे तपस्या, भगवद गीता में भगवान कहते हैं 3 चीजों को तुम कभी नहीं त्याग सकते, चाहे तुम आत्मज्ञानी व्यक्ति हो। क्या है ये 3 चीजें, यज्ञ दाना और तपस्या। संक्षेप में तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागना जो कि शास्त्र के विपरीत है। ये हमारा आधार शास्त्र, धर्मां त्यू साक्षात भगवत परिणाम, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। फिर स्नान करना, शास्त्र में कहा गया है दिन में 2 दफा कम से कम स्नान करना चाहिए। जब तक पानी है कर सकोगे, जब पानी समाप्त हो जाएगा तो 1 दफा भी मुश्किल होगा। दिन में 2 दफा स्नान करना। फिर सहनशीलता, व्यक्ति का एक गुण ये होना चाहिए उसे अत्यंत सहनशील होना चाहिए। क्षेत्रीय महाप्रभु ने इस विषय पर बड़ा बल दिया, सिद्धांत पृथ्वी नीचे ना करोड़ रुपए है, आबादी का मना देना कितना भी सर है। हमें सहनशील होना चाहिए, बौद्धिक संसार में आदर अपमान सुख दुख विजय हार ये सब आएंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जैसे मौसम बदलते रहता है उसी प्रकार सुख और दुख दोनों स्थिति में हमें स्थिर रहना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए। फिर ये भेदभाव क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बड़े गहराई के साथ शिक्षा दी भक्ति के विषय में और भगवान के शरणागत होने के विषय में। महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है। तो हमारे पास मानव समाज में ये ज्ञान होना चाहिए कि हम ये भेद कर सकें क्या ठीक है क्या गलत है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो ये ज्ञान आप केवल जब प्राप्त करोगे अगर आपके पास स्वयं ज्ञान हो, अगर स्वयं अंधे हो तो कैसे देखोगे। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्व साधकाया नाम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया। भक्तों की संगत में रहो, शास्त्रों का अध्ययन करो, इसके द्वारा आप पहचान सकोगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। फिर मन पर विजय प्राप्त करो, मन जो है आपका शत्रु भी बन सकता है और बंधु भी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ। जिस व्यक्ति ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट होगा, और जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं किया वो सदा अशांत रहेगा। शास्त्र में कहा गया है मन को बंधु बनाओ। मन को बंधु बनाने का अर्थ क्या है? मन को बंधु बनाने का अर्थ है मन में सदा आध्यात्मिक विचार रखो। मन मंगों को बंधु बनाने का अर्थ है मन में शासन के आधार पर विचार रखो। और अगर आप मन को वश में रखोगे तो बड़ी सरलता के साथ भक्ति की विधियों का पालन कर सकोगे। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, मन मना भावा मत भक्तो मन्याजी मम माम में वाची सत्यम देव प्रति जन में। भगवान गीता में कहते हैं मेरा चिंतन करो जैसे मैं सबसे प्राचीन हूं, मेरा चिंतन करो जैसे मैं युवक हूं। भगवान कहते हैं अनेक रूपों से हम उनका चिंतन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का उपदेश का आदेश का स्वरूप का। तो किसी न किसी रूप से मन को वश में लाओ। अर्जुन ने क्या कहा, चंचलाई मना कृष्णा, हे कृष्णा मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी जाना कठिन है। तो क्या आप कहोगे जो अर्जुन ने ये कहा तो हमारी लिए क्या संभव होगा। भगवान आगे ये भी कहते हैं भक्ति की विधियों के पालन से मन को आप वश में ला सकोगे। ये जो अनेक नियम दिए जाते हैं आपको, जप करो मंगलार्थ में आओ इत्यादि, ये सब विधियों के पालन से मन को आप वश में कर सकते हो। तो फिर आगे अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट नहीं देना। आजकल आप देखते हो बुद्धिज्म का प्रचार काफी हो रहा है सारे देशों में। परसों मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में आज तीसरा स्टूडेंट लीडर बुद्धिज्म की क्लास में बुद्धिज्म पढ़ रहा है और बुद्धा जी प्रकट हुए थे, ऐसे तो बुद्धा जी भगवान के अवतार हैं। उनका सिद्धांत था अहिंसा, पर आजकल के जो आधुनिक युग के बुद्धिस्ट हैं वो किसी को नहीं छोड़ते, सब चीज खा लेते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं चाहे किसी धर्म के भी हो, कई बार प्रभुपाद जी ईसाई नेताओं से चर्चा करते थे, तो प्रभुपाद जी उन्हें कहते थे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा नाउ शैल नॉट किल, तुम किसी को मारोगे नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो हम धार्मिक हैं और पशुओं पर अत्याचार करें। तो इसलिए आध्यात्मिक गुणों में एक गुण है अहिंसा। आप जद बाहर की कथा में पढ़ते हो कि वो इतने सावधानी से चल रहे थे कि एक चींटी पर भी पैर नहीं आ जाए। आप चैतन्य चरितमृता में एक शिकारी की कथा पढ़ते हो जिसका नाम था मृगारी। मृगारी शिकारी पशुओं को पहले घायल करता था, फिर उन्हें तड़पते हुए देखता था, इसमें आनंद उठाता था, और फिर जब मर जाते थे खाता था और बेचता था। फिर ये नारद मुनि जंगल में पहुंचे, नारद मुनि ने देखा अनेक घायल पशु। नारद मुनि ने पूछा कौन है इसका कारण। जब नारद मुनि ने उन्हें शिक्षा दी कि इसका क्या परिणाम होगा, तो शिकारी ने निर्णय कर लिया कि मैंने ये पाप का धंधा छोड़ना है। उसने पूछा पर ये तो मेरे आमदनी का साधन है, अगर मैं ये छोड़ दूं तो कैसे रोटी आएगी। नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, दूर दूर तक खबर पहुंच गई ये भयंकर शिकारी भगवान का भक्त बन गया है। तो भारत में रिवाज है अब संत को भी मिलने जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते। तो एक दिन नारद मुनि उन्हें मिलने आया अपने साथी अंगिरा मुनि के साथ। उन्होंने देखा कि इस शिकारी में इतना परिवर्तन आ गया था कि वो अपने पैरों को भी नहीं रख रहा था जमीन में, ये देखे बिना कोई चीजी तो नहीं है। तो ये है साधु संघ का प्रभाव। तो जो आध्यात्मिकवादी हैं उनमें अहिंसा का भाव रहता है। ये दान सेलिब्रेसी शास्त्रों का अध्ययन, हमारी संस्था में शास्त्रों के वितरण पर बल दिया जाता है, है कि नहीं। उसे क्या कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बृहद मृदंगा, सिद्धानंद मृदंगा की आवाज तो थोड़ी दूर तक ही जाएगी, पर हम एक ग्रंथ को बांटोगे जूह में बॉम्बे में उसका ध्यान हो सकता है लंदन में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने इस सेवा को बृहद मृदंगा कहा। पर हमें शास्त्रों का केवल वितरण नहीं करना, उनका अध्ययन भी करना है, ये भी आवश्यक है। इसलिए वो कहता भागवतम क्लास होती है, गीता क्लास होती है, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो 30 गुणों में नारद मुनि ने 30 गुणों का वर्णन किया है जो कि हर व्यक्ति जो मानव देह प्राप्त करे उसे अनुकूल करना चाहिए। और ये 30 गुणों में एक गुण क्या है, शास्त्रों का अध्ययन। तो शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और आज इस्कॉन में अनेक कोर्सेस चल रहे हैं, भक्ति शादी भक्ति वैभव इत्यादि, जिसमें भक्तों को मौका दिया जाता है बड़े गहराई के साथ क्या करें ग्रंथों का अध्ययन। तो 30 गुणों में एक गुण क्या है, शास्त्रों का अध्ययन। प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा है कि परम भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त ये भक्त शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं, सबसे पहले भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों क्यों प्रसन्न होते हैं? आप उनकी वाणी को पढ़ रहे हो, भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है तो मुझे उसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, शास्त्रों का अध्ययन और 30 गुण जो कि नाद मुनि ने वर्णन किया है, इन 30 गुणों में एक गुण क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। फिर साधारण जीवन, सारा जीवन और ऊंचा विचार, यह है हमारा सिद्धांत। क्या? सारा जीवन ऊंचा विचार, ये है शासन का निर्णय। भौतिक समाज में क्या नियम है? ऊंचा जीवन सादा विचार, राव लूटो चोरी करो जेब काटो, पर ऊंचा जीवन चाहिए, नई मोटर नई कपड़े और सादा विचार। सादा विचार का अर्थ क्या है? पशु समान, कहाँ है इंद्रिय तृप्ति की सुविधा? और सादा जीवन ऊंचा विचार का अर्थ क्या है? सादा जीवन उतना ही आवश्यक रखो जितने उतना ही रखो जितना आवश्यक है, और ऊंचा विचार सदा ये भाव जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये बताओ जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये बताओ जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है? ये था युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न। और एक तरफ से देखा जाए ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं आपके और हमारी भलाई के लिए। युधिष्ठिर महाराज तो शुरू से ही आत्मज्ञानी है। तो कहा गया है सारा जीवन। फिर संतुष्टता, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। भौतिक जीवन में कोई संतुष्ट है? हाँ? आप सोचते हो भारत का जो सबसे धनी व्यक्ति है या विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति है, हमें धन से संतुष्ट है? अगर संतुष्ट होते रोज नया धंधा क्यों शुरू करते? रोज नया धंधा शुरू करते हैं क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, सोचते जितना है वो उतना कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो और प्रयास करते हैं। तो भौतिक संसार में वही व्यक्ति संतुष्ट है जो कि परम भगवान के शरणागत हो जाए। 34 स्कंद में नाद मुनि प्रचेतस को उपदेश देते हैं। प्रचेतस एक राजा के पुत्र थे, राजा का नाम तक महाराज परिश्रम परिषद। नाद मुनि ने कहा, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय पश्यन्ति च तुष्यति अशुचिनादन। वो व्यक्ति परम भगवान को प्रसन्न कर सकता है जिसमें दया की भावना हो, जो हर स्थिति में संतुष्ट है और जिसने मन और इंद्रियों को वश में रखा है। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हो वो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकता है। तो नाद मुनि इस अध्याय में 30 गुणों में एक गुण क्या कहते हैं? संतुष्ट। पर आप संतुष्ट केवल जब होगे जब आप आध्यात्मिक जीवन को अनुकूल करो, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करोगे तो ही संतुष्ट प्राप्त हो सकती है। आप देखते हो भौतिक समाज में सब अशांत हैं। हम सोचते हैं हमारे देश में सब अशांत हैं, दूसरे देशों में लोग शांत हैं, सब जगह बेचैनी निराशा तनाव चिंता का कारण क्या है? अनेक भौतिक इच्छाएं। तो कोई संतोष नहीं है। पर जिस व्यक्ति ने हाय नाम स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट है। सनातन गोस्वामी के पास एक परस पत्र था, जो किसी चीज को भी छूने पर सोना बना देता था। तो सनातन गोस्वामी ने वो परस पत्थर कहाँ रखा था? कूड़े के दर्रे के नीचे। जब एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण, मैंने सुना है आपके पास एक बड़ी कीमती वस्तु है। सनातन ने कहा, हाँ ले लो वो परस पत्थर। तो जब किसी ने उसे कहा, अगर ये सबसे कीमती वस्तु होती तो उस सर ने इसे कूड़े के डब्बे के नीचे क्यों रखा? फिर उन्होंने क्या दिया? तो अगर आपको असली संतुष्ट चाहिए तो हमें क्या परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर संतों की सेवा करना, 30 गुणों में एक गुण क्या है? संतों की सेवा करना। ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा, मेरे कारण तुम्हें इतनी तपस्या उठानी पड़ी, भांगो मेरे से क्या वर चाहिए? ध्रुव ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा उत्तम भक्तों की संगत में रहूं। उत्तम भक्तों की संगत में रहोगे तो सेवा भाव अनुकूल होगा। तो 30 गुणों में एक गुण ये है, संतों की क्या करना? संतों की सेवा, संतों की संगत प्राप्त करना, संतों की सेवा करना। और ये भाव होना चाहिए सब संतों की सेवा करना। ये भाव नहीं होना चाहिए केवल हम गुरु जी की सेवा करेंगे, दूसरों की नहीं। सब संतों की सेवा करो, सब संतों को आदर दो, सब संतों की संगत दो, साधु संगत। तो ये है संतों की सेवा करना। और जो कार्य भक्ति से संबंधित नहीं है, जो कार्य प्रतिकूल है, उसे त्यागो। रूप गोस्वामी आध्यात्मिक जीवन के महत्व के विषय में कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़ो भरो, तो भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। जैसे कि भौतिक समाज में अगर आपको कोई सफलता चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के कुछ प्राप्त नहीं होना। आपको IIT में दाखिला चाहिए, जो कि हर भारतीय की इच्छा रहती है, हर विद्यार्थी की, तो फिर प्रयास परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई जब करते हो तो खेलना कूदना बंद करना पड़ता है। तो उसी प्रकार परम भगवान के शरणागत होने के लिए हमें जो प्रतिकूल कार्य हैं वो त्यागना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है, जो कि प्रतिकूल कार्य हैं, जो आवश्यक नहीं है, इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहारा पैसा पर जल पर अभाग्रह जनसंघर्ष लोलियम चा सभी भक्ति। आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर आप आवश्यकता से अधिक प्रयास करोगे, आवश्यकता से अधिक खाओगे। प्रजल्प, प्रजल्प का क्या अर्थ होता है? वो चर्चा जिसका कृष्णा से प्रजल्प, और हमें प्रजल्प की आदत है सबको। कृष्ण कथा की आदत डालने में कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि हम पले हैं जिस वातावरण में, हम बचपन से क्या करते आए हैं, प्रजल्प करते हैं। तो यहां नारद मुनि कह रहे हैं, प्रजल्प भी है प्रतिकूल है। भौतिक वादियों की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक है, और उससे अधिक नहीं। तो जो कार्य संभव है, जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे त्यागो। फिर गंभीर रहना और मौन व्रत रखना। आप कहोगे मौन चुपचाप रहे, इसका अर्थ है चर्चा करो तो कृष्ण कथा करो। और जब भौतिक चर्चा का समय आता है जब क्या बन जाओ, गूंगे बन जाओ, भगवत समय आप जद भारत की कथा पढ़ते हो। जद भारत पूर्व जन्म में पूरे पृथ्वी के राजा थे, जिसमें उनका नाम क्या था, भारत में, और पूरे पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष। पर वो एक पशु के प्रति आकर्षित हो गए थे, जिसके कारण उन्हें पशु के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा, जिसके पश्चात उन्हें जन्म प्राप्त हुआ एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें उनका नाम क्या था, जनभान के रूप में जब जन्म प्राप्त किया, उन्हें पता था क्या गलती उन्होंने पूर्व जन्म में की थी, तो समाज में उनका आचरण कैसे था, जैसे वो गूंगे थे और बहरे थे तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, गूंगा व्यक्ति बहरा व्यक्ति। तो जब उन्हें मौका मिला महाराज रघुगुना को उपदेश देने के लिए, तो वो शेर जैसे बोले। तो इसे क्या संदेश मिलता है, ये संदेश मिलता है जब भौतिक चर्चा भौतिक प्रजल्प का समय हो तो आपको गूंगा और बहरा बन जाना चाहिए, और जब प्रचार का मौका हो तो शेर जैसे। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हम विनम्रता के साथ ग्रंथों को कैसे बांटें। एक अमेरिकन लड़की ने पूछा था, प्रभुपाद हाउ कैन आई बी हम्बल एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एट द सेम टाइम, बिकॉज टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स यू हैव टू बी अ लिटल अग्रेसिव। प्रभुपाद सेड, be a lamb at home and a lion outside. कि भक्तों के साथ जो व्यवहार है lamb, what is the Hindi word for lamb? मेदना। जब भक्तों से व्यवहार हो तो मेदना जैसे व्यवहार रखो, और जब प्रचार का मौका आए तो शेर जैसे। तो ये नहीं घर में शेर बन जाओ और बाहर मेदना बन जाओ। अक्सर देख क्या देख रहे, घर में हम शेर बन जाते हैं लड़ने को तैयार, और प्रचार के समय मेदना बन जाते हैं। तो होना चाहिए उल्टा, घर में मेदना और बाहर शेर। तो यहां कहा जा रहा है भक्त को मौन रहना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि मौन की हम चर्चा नहीं करें, इसका यह अर्थ है अब भौतिक चर्चा से बचें, सदा निरंतर 24 घंटे हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं, कृष्ण कथा कर सकते हैं, तो बहुत एक चर्चा उसके लिए हमारे पास समय नहीं। इसलिए 30 गुणों में एक गुण क्या है, एक गुण ये है कि सदा शांत रहना। फिर सब जीवात्मा को भगवान का ज्ञान देना। तो इस प्रकार नारद मुनि ने 30 गुणों का वर्णन किया है। ये कहा है कि मनुष्य जीवन का उपयोग करो किसमें, भगवत प्राप्त करें। तो ये 30 गुणों के वर्णन करने के पश्चात नारद मुनि आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रमों में होना चाहिए, जब ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और ये है 4 आश्रम, फिर साथ में हैं 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ, सिर के साथ, शत्रु की तुलना की जाती है किसके साथ? भगवान के साथ। वैश्य की तुलना की जाती है किसके साथ? शूद्रों की तुलना की जाती है प्रेम के साथ। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है शेर के साथ। क्यों? शेर शरीर का एक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति को शेर के बगैर? देखा है? हाथ के बगैर देखा है, आंख के बगैर देखा है, पैर के बगैर देखा है, पर शेर के बगैर देखा है? तो ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मणों के गुणों का भी वर्णन है। समो दमो तमो सोचम शांति राज्यों में वचन ज्ञान विज्ञान मस्तक ब्रह्म कर्म वाजन। ये ज्ञान प्राप्त होता है 18वें अध्याय में। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति कोई गृहस्थ आश्रम हो और उसकी मान लो इच्छा हो संतान की, संतान अगर चाहिए आपको तो हमें क्या करना चाहिए? गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार में अनेक नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए अगर आपको संतान चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं मैथुनीय का उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक गुलाब की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में नारद मुनि यह कह रहे हैं कि हमें द्विज बंधु हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करोगे तो ही जीवन की सफलता प्राप्त होगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी मैथुनीय की चर्चा करते हैं। भागवतम में हर विषय की चर्चा स्पष्ट है। जैसे कि एक कथा है भागवतम में एक राजा की जिनका नाम था महाराज ययाति। इस महाराज ययाति को 10,000 वर्षों के लिए इंद्रिय तृप्ति की हर प्रकार की सुविधा थी। तो 10,000 सालों के पश्चात राजा ने कहा कि मैंने कितना प्रयास किया पर मैं इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो भगवत में कहा गया है कि अगर आपको सुख चाहिए तो ये सुख प्राप्त होगा इंद्रिय तृप्ति द्वारा नहीं, परम भगवान के शरणगत होकर। ये असली साधन। तो नारद मुनि कह रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मैथुनीय का उद्देश्य होना चाहिए संतान भगवत प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और प्रभुपाद जी का अगर किसको संतान चाहिए तो गर्भदान संस्कार के बजाय अगर आप 50 माला करो वो भी उसी के बराबर है। पर हम सबका भाव ये होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में भी भगवत प्राप्ति। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में हमें पूरी छूट है। जैसे 7वें स्कंध में युधिष्ठिर महाराज ने ही नारद मुनि से पूछा, जैसे हमने थोड़े समय पहले कहा था, युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये बताओ किस प्रकार हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैदिक साहित्य के आधार पर जीवन को सफल बना सकते हैं। ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा? नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने कहा जो गृहस्थ आश्रम में है उसे लाइवलीहुड कुछ कमाई करनी चाहिए, चाहे नौकरी करो धंधा करो कुछ करना चाहिए। साथ में उन्हें कमाई का हिस्सा भगवान के चरणों में देना चाहिए। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? साधु संघ के द्वारा। इसलिए नारद मुनि कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में है उन्हें बकायदा साधु संग में रहना चाहिए। साधु संग में रहोगे तो ठीक ज्ञान प्राप्त होगा, और भक्तों की संगत में रहोगे तो क्या गलत विचार सुनने में मिलेंगे। तो इसलिए हमें भक्तों की संग में रहना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो शास्त्रों का अध्ययन करोगे फिर आप समझ पाओगे क्या है जीवन का लक्ष्य। तो नारद मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं समाज का विभाजन होना चाहिए, और ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चार आश्रमों में, और जो ब्राह्मण है उनका क्या भाव होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों की शिक्षा। इसलिए हमारी संस्था में अगर किसी को ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो कई बार यह कहा जाता है पहले भक्ति शास्त्री का कोर्स करो। क्यों? शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो समझ पाओगे कि ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, ब्राह्मण का क्या आचरण होना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए, और ये संभव है शासन के अध्ययन के द्वारा। यहाँ कहा जा रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य होना चाहिए शासन का अध्ययन और शासन का प्रचार। तो समाज में ब्राह्मणों का होना आवश्यक है। जो क्षत्रिय हैं उनका क्या कर्तव्य बनता है? समाज का शासन करना। क्षत्रिय जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, और क्षत्रियों का भाव रहता है समाज की सुरक्षा। खास करके समाज में जो बूढ़े व्यक्ति हैं, स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा होना चाहिए। आज आप समाज में देखते हो किसी की सुरक्षा नहीं है। किसकी सुरक्षा? चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की सुरक्षा नहीं हुई। पर क्षत्रियों का फर्ज है सुरक्षा। और युद्ध के समय जो क्षत्रिय राजा होते थे सबसे आगे युद्ध में लड़ते थे। आज जब युद्ध होता है हमारे नेता अंडरग्राउंड बंकर में छुपते हैं। तो पर प्राचीन समय में जो क्षत्रिय राजा थे सबसे आगे खड़े होते थे। फिर वैश्य, वैश्य का होना भी आवश्यक है। उनकी तुलना की जाती है पेट के साथ। वैश्यों का क्या कर्तव्य? समाज में व्यापार करना, खेती करना। खेती करोगे अच्छी तरह तो अच्छी फसल आएगी। भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब तुम क्या करोगे? यज्ञ करते हैं धर्म के नियमों का पालन। पृथ्वीराज जब राजा बने पूरी प्रजा अत्यंत दुखी थी। पृथ्वीराज ने आदेश दिया भगवान का गुणगान करो। तो जो वैश्य है उनका कर्तव्य है खेती और आगे गायों की सुरक्षा। सात माताओं में एक माता है गाय माता। तो गायों की सुरक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस्कॉन के भक्तों के द्वारा सारे विश्व में गौशाले खोल रहे हैं। रशिया जैसे देश में भी आज इस्कॉन संस्था में 15 गौशाला हैं जहाँ की गायों की रक्षा हो रही है। तो ये दिखाया जा रहा है समाज को गायों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। प्राचीन समय में धन मापा जाता था ये देखकर कितनी गायें हैं। जब भगवान प्रकट हुए मथुरा में वासुदेव देव की कैदी थे उस समय। भगवान प्रकट हुए अपने चार हाथों के रूप में सोनकर पूरा शरीर गहनों के साथ सजा हुआ था, मनियों के साथ। جن میں ایک منی ہے جس کا نام ہے ویدوریا منی, جسے آپ کیول ویکنٹھ دھام میں خرید سکتے ہو اور کھانے, جو ہر سیکنڈ اس کا رنگ بدلتا ہے. تو واسدیو دیو کی بڑے پرسن ہوئے یہ دیکھ کر کہ بھگوان پرگٹ ہو چکے ہیں. تو واسدیو کی اچھا تھی کچھ دان دیا جائے. یہ رواج ہے جب بیٹا پیدا ہو تو پتا دان دیتے ہیں. پر ان کی سمسیا کیا تھی, وہ جیل میں تھے, وہ دان دے نہیں سکتے. تو انہوں نے 10,000 سجیو گائیں من ہی من میں دان دے دی. نند مہاراج کے پاس 900,000 گائیں تھی. کتنی؟ 900,000. اور نند مہاراج کی ہر گائے سجی ہوئی تھی ہیروں کے ساتھ, موتی کے ساتھ. ان میں کئی گائیں تھیں جن سے سگندھت دودھ آتا تھا. ابھی تو آپ کو سگندھ چاہیے تو آپ کو چینی ڈالنی پڑتی ہے یا وینیلا ڈالنا پڑتا ہے یا اسٹرابیری یا کوئی. تو یہ گائیں سگندھت دودھ دیتی تھی. سگندھت دودھ کیسے دیتی تھی؟ کیونکہ جو گھاس کھلایا جاتا تھا وہ بھی سگندھت تھا. اگر آپ سگندھت گھاس کھلاؤ گے تو سگندھت دودھ نکلے گا. تو پراچین سمے میں ویکتی کا دھن ماپا جاتا تھا, یہ دیکھا کتنی گائیں ہیں. تو گایوں کی سرکشا بہت مہتوپورن ہے اور ویشیوں کا کرتویہ بنتا ہے کہ گایوں کی سرکشا کی جائے. اور شودر اس کی تلنا کی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ پیروں کے ساتھ. پیر کا فرض بنتا ہے پیٹ کو سنبھالے, کندھوں کو, سر کو. تو شودروں کی کا بھاو رہنا چاہیے, تین ورن کی سیوا کرے. ویسے دھیان سے دیکھا جائے اس کلیوگ میں ہم کیا ہیں, کلو شودر, ہم سب ہیں شودر کے سمان. اگر آپ کہو گے نہیں نہیں ہم تو براہمن ہیں, تم ہو شودر. چیتن مہاپرو نے کہا ہم شودر کے سمان ہیں. ہم سب کا کیا بھاؤ ہونا چاہیے؟ کیا ہے, کیا ہے اپائے ہم سب شودروں کے لیے کلی یوگ میں؟ کیا ہے اپائے؟ ہری نام ہری نام ہری نام ایو کیولم. چیتن مہاپرو نے بنا بھید بھاؤ کے سب کو یہ ہری نام دیا. جب چیتنیہ مہاپربھو دکشن بھارت کی یاترا کر رہے تھے, دور دور سے لوگ آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے. ان کو دیکھتے ہی ہری نام کا اچارن شروع کرتے تھے. اور جب یہ واپس لوٹتے تھے لوگ اپنے استھان میں, انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہری نام دیتے تھے. اس پرکار چیتنیہ مہاپربھو نے پوری پرجا کو کیا بنا دیا تھا؟ ویشنو بنا دیا تھا. تو آج کے شلوک میں نارد منی یدھیشٹھر مہاراج کے پرشنوں کا اتر دے رہے ہیں. اور جیسے ہم نے سنکشیپ میں کہا تھا, نارد منی نے 30 گنوں کا ورنن کیا ہے جو ہر ویکتی جب منشیہ دیہ پراپت کرے اسے انکول کرنا چاہیے. اور نارد منی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر آپ گرہستھ آشرم میں ہو تو میتھری کا اپیوگ ہونا چاہیے ادھیاتمک سنتان کے لیے, اندریہ تیپتی کے لیے نہیں. اور جو براہمن ہیں, سپیشل ہیں, سب کا یہ بھاؤ ہونا چاہیے بھگوان کی سیوا. جو برہمچاری ہے ان کا کرتویہ بنتا ہے بھکتی کی ودھیوں کا پالن کرے, سیوا کرے, پرچار کی درشٹی میں رہے, استریوں کی سنگت سے بچیں, استریوں کا چنتن سے بچیں, پرادھیانمک چنتن کو بڑھائیں. جو گرہستھ ہے ان کا کرتویہ بنتا ہے کسی پرکار سے روزی کمائیں, और भगवान की सेवा भी करें और अपनी देख घर की देखभाल भी करें। गृहस्था और गृह मेरी उसे कहा जाता है जब व्यक्ति पत्नी बच्चों के साथ रहता है, भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए। गृहस्था कहा जाता है जब वो इस आश्रम का उपयोग करता है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर संतान है तो संतान को शुरू से शिक्षा देते हैं, कॉमन आचरण प्रज्ञ हो 5 साल की आयु से जीवन का क्या लक्ष्य बना जाए, वो है गृहस्था। और जब हम नियमों के आधार पर नहीं चले तो गृह मेरी हो जाता है। फिर वर्णप्रस्थ और सन्यासी, सन्यासी का कर्तव्य है घर घर जाए प्रचार करें, आचरण को शास्त्र के आधार पर रखें। सन्यासी के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार एक सफेद चादर में छोटा काला का दाग भी हो वो दूर से दिख जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार सन्यासी का आचरण बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए और सन्यासी का आचरण सन्यासी को बड़े सावधानी